ओम शांति। आप सभी का इस भट्टी में आने के लिए हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे बीच में हमारे आदरणीय वरिष्ठ भ्राता आत्म प्रकाश जी भी पहुंचे हुए हैं, तो हम दिल से जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करते हैं। भ्राता जी के परिचय में मैं आप सबको बताने जा रही हूं कि भ्राता जी नागपुर महाराष्ट्र से ज्ञान लिया 1972 के अंदर, और नागपुर विश्वविद्यालय में 1973 में एमएससी स्वर्ण पदक से इन्होंने पास की। 1976 में ये माउंट आबू में अपना जीवन जो है सेवा में इन्होंने समर्पित किया। उसके बाद भारत के अनेकों ही प्रांतों में जाकर के इन्होंने बहुत सारी आत्माओं का जीवन राजयोग के द्वारा परिवर्तन किया। और भाई जी की जो विशेष विशेषता है वो ये राजयोग का अध्ययन स्वयं भी करते हैं और दूसरी आत्माओं को भी राजयोग का अध्ययन जो है वो कराते हैं। इसी के साथ ही आपने विश्व के पांचों महाद्वीपों में जाकर के अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं एशिया के 88 देशों में भ्रमण करके ईश्वरीय संदेश तथा राज्यों की शिक्षाएं देकर अनेक आत्माओं को लाभान्वित किया, और आप युवा प्रभाग के मुख्य कोऑर्डिनेटर हैं और मधुबन के अंदर ज्ञान सरोवर, शांतिवन और मधुबन में तीनों ही परिसर के अंदर ये टोली विभाग की सेवाएं भी संभालते हैं। और आज हम सबका अति सौभाग्य है कि इतनी सेवाधारी तपस्वी मूरत आत्मा हम सबके बीच में है। तो मैं भाई जी के लिए कुछ शब्द बोलने जा रही हूँ। आपके आने की खुशी कैसे बयां करें हम, आपके आने की खुशी कैसे बयां करें हम, बस इतना जान लो अब रोशन है हमारा सारा जहां आपसे, अब रोशन है हमारा सारा जहां आपसे।
ओम शांति। भट्टी का लक्ष्य और उद्देश्य, बाबा ने हमें मधुबन में योग की भट्टी करने का गोल्डन चांस दिया है, इसलिए हम सभी आत्माएं बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। ताली बजाओ जरा एक बार। क्योंकि ऐसी जो श्रेष्ठ भूमि है, तपोभूमि है, वरदानी भूमि है, बाबा की चरित्र भूमि है, उस भूमि पर आकर योग तपस्या करने का चांस मिलना ये श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। तो जब भी योग की भट्टी का आयोजन किया जाता है, बाबा ऊपर से देखते हैं, इतने मेरे जो अनन्य बच्चे हैं वो भट्टी करने के लिए बाबा के घर में पहुंचे हुए हैं। तो बाबा के घर में जो बच्चे आते हैं उनकी बाबा विशेष खातरी करते हैं, खाने पीने की रहने की खातरी तो होती ही है, लेकिन विशेष अलौकिक अनुभव रूपी गिफ्ट देखकर बाबा बच्चों की खातरी करते हैं। और वो अलौकिक अनुभव रूपी जो गिफ्ट होती है वो लिफ्ट का काम करती है, हमारे स्थिति के स्तर को ऊंचा उठाती है। तो योग की भट्टी में बाबा हमारी विशेष पालना करते हैं। बाबा ने हमें पुरुषार्थ रूपी गाड़ी दी है हरेक को। दुनिया में गाड़ी किसी की कितनी भी अच्छी हो, लेकिन समय प्रति समय उसको गैरेज में ले जाकर उसकी सर्विसिंग करनी होती है, ताकि उसकी स्पीड रफ्तार बढ़ती रहे। तो ऐसे योग की भट्टी में भी बाबा हमारे पुरुषार्थ रूपी गाड़ी की मरम्मत करते हैं, उसकी सर्विसिंग करते हैं, ताकि हमारे पुरुषार्थ की रफ्तार और तेज हो जाए। तो सफल योग की भट्टी करना अर्थात आत्मा में जो देहाभिमान की मिट्टी है, उस मिट्टी को गला देना, खत्म कर देना। सफल योग की भट्टी करना अर्थात माया के साथ जो हमारी अनेक जन्मों की दोस्ती है उसकी कट्टी करना, उसकी छुट्टी करना, उसको बाय बाय करना। सफल योग की भट्टी करना अर्थात स्वयं में परिवर्तन अनुभव करना। भट्टी में सोने को गलाते हैं तो उसका रूप और रंग बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है। से आत्मा जब योग की अग्नि में पकती है तो आत्मा का रूप और रंग बदल जाता है। रूप हमारा निराकारी निखरता जाता है और रंग भी आत्मा का स्वतोपदान होता जाता है। परिवर्तन जो शब्द है उसका अर्थ है परिवर्तन, परियो जैसा व्यवहार, फरिश्तों जैसा व्यवहार। तो भट्टी में आने के बाद हमारे परिवार में, हमारे जीवन में ऑटोमेटिक परिवर्तन आता जाता है। तो भट्टी का लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण और संपन्न बनना। अलौकिक जो खजाने हैं उन खजानों से स्वयं को पहले संपूर्ण संपन्न बनाना। बाप मेरा सागर है, उस सागर से मैंने बहुत खजाने प्राप्त किए हैं, इसलिए मैं संपन्न हूं। और ऐसी संपन्नता की अनुभूति करते हैं तो स्वतः ही हम संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचते जाते हैं। तो ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना ये हमारा लक्ष्य है। लक्ष्य जितना टाइट होता है उतना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाबा से माइट मिलती है, शक्ति मिलती है, सहयोग मिलता है। इसलिए कहते हैं लक्ष्य में जितनी दृढ़ता होती है उतनी हमें सफलता उसमें मिलती है। क्यों ये कहावत प्रसिद्ध है? जितनी दृढ़ता उतनी सफलता। क्योंकि जिस कार्य के लिए हमारी जितनी दृढ़ता होती है उतनी जो बाबा ने हमें खजाने दिए हैं समय और संकल्प का खजाना, वो खजाना हम उसके पीछे लुटा देते हैं, लगा देते हैं, परिणाम स्वरूप हमें मन इच्छित प्राप्ति होती है। तो इसलिए ये जो तीन चार दिन आपकी बट्टी है उसमें आपका लक्ष्य बहुत पक्का हो कि मैंने इस भट्टी में बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव जरूर करना है। लेकिन उसके लिए शर्त है, उन शर्तों को अगर आप पालन करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं ये भट्टी आपकी यादगार बनकर रहेगी। पहली कंडीशन, जैसे ईंटों की भट्टी को एक के ऊपर रखते हैं, चारों तरफ से बंद करते हैं और नीचे से अग्नि जलाते हैं, उस अग्नि में जो ईंटें पकती हैं उनको कंस्ट्रक्शन के कार्य में लगाते हैं, तो ऐसे ही आत्माओं रूपी ईंटों को योग की अग्नि में पकाते हैं और जो आत्माओं रूपी ईंटें पकती हैं उनको बाबा नई दुनिया की स्थापना के कंस्ट्रक्शन के कार्य में लगाते हैं। लेकिन योगी हमेशा अंतर मुक्ता की गुफा में बैठकर तपस्या करता है, इसलिए हमें भी अंतर मुक्ता की गुफा में बैठकर तपस्या करना है। जो भी माया के आने के दरवाजे हैं वो सारे बंद कर देने हैं, मौन व्रत धारण करना है, मुख का मौन, नैनों का मौन, कानों का मौन, मन का मौन, वृत्ति का मौन, जो भी माया के आने के दरवाजे हैं सब बंद कर देना है और योग तपस्या में हमें लीन हो जाना है, खो जाना है। तो अभी ब्रह्मा बाप समान बनने का हमारा लक्ष्य है। जब भी मधुबन में जाते हैं ब्रह्मा बाबा शांति स्तंभ के रूप में हमारे सामने खड़े दिखाई देते हैं। शांति स्तंभ में चार बातों का विशेष जिक्र किया गया है, शांति का स्तंभ, शक्ति का स्तंभ, पवित्रता का स्तंभ और ज्ञान का स्तंभ। तो स्तंभ अर्थात बहुत ऊंची स्थिति, स्तंभ अर्थात अचल अडोल स्थिति अनुभव करना। माया कितनी भी समस्याएं हमारे सामने लाएं फिर भी हमें अचल अडोल रहना है। स्तंभ अर्थात अनेक आत्माओं को प्रेरणा प्रदान करने वाली स्थिति बनाना। तो ब्रह्मा बाबा हमारे सामने खड़े हैं, तो ब्रह्मा बाप समान हमें बनना है, तो जो ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया है उस पुरुषार्थ को हमें फॉलो करना होगा, उनके कदमों पर कदम रखना, आगे बढ़ना होगा। लेकिन जो योग गहन तपस्या हम करने जा रहे हैं उससे हमें लाभ क्या होते हैं? पहला लाभ, योग तपस्या से आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है। दूसरा लाभ, योग तपस्या से हमारे सिर पर जो पापों का बोझ है वो बोझ धीरे 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 कम होने लगता है, आत्मा हल्की फुल्की अनुभव करती है। तीसरा लाभ, योग तपस्या से आत्मा में परिवर्तन आता है, संस्कारों में परिवर्तन आता है। और चौथा लाभ, योग तपस्या से हम तपोबल जमा करते हैं, मनोबल इकट्ठा करते हैं, जिससे हम मनसा सेवा बेहद की सेवा सहज रीति से कर सकते हैं। और पांचवा लाभ, योग तपस्या के द्वारा हमें जो अंतिम पेपर देना है उस अंतिम पेपर की तैयारी भी हम करने लगते हैं। तो इतने सारे लाभ हमें योग तपस्या से होते हैं। अभी ब्रह्मा बाबा ने कौन सी बातों पर पुरुषार्थ किया था जिससे इतनी ऊंची स्थिति प्राप्त की, उस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। पहली बात, ब्रह्मा बाबा ने शुरू दिन से, जब से आत्मा का ज्ञान बाबा को मिला उस दिन से बाबा ने आत्मा के पाठ को बहुत पक्का किया। मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। एकांत में बैठकर आत्मा के अभ्यास को घोट घोट के, रट रट के, कूट कूट के बहुत पक्का किया। हजारों बार बाबा पेपर लिखते थे, मैं आत्मा हूं, दीवार पर लिखते थे आत्मा हूं, सत्संग में जो भी आत्माएं आती हैं, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये मेरा बच्चा नहीं, आत्मा है। बाबा ने आत्मा के पाठ को बहुत पक्का किया। वैसे भी मधुबन में आने के बाद कोई भी अलौकिक अनुभव करना है उसके लिए पहली शर्त है अनुभव, अर्थात जब तक स्वयं को अनुबिंदु स्टार नहीं समझते हैं तब तक कोई भी अलौकिक अनुभव आपको हो नहीं सकता, चाहे कितनी भी मेहनत करो। तो मैं अनु बिंदु हूं, अनु हूं, स्टार हूं। इस अभ्यास को हमें बहुत पक्का करना है। यहां आप सभी सभी बातों से फ्री होकर बैठे हैं, अपने कर्म क्षेत्र पर कोई ना कोई कर्म करने के कारण बुद्धि उसमें लगती है। यहां आप सभी बातों से फ्री होकर, आजाद पंछी होकर तपस्या के लिए बैठे हैं, लेकिन यहां सुंदर अनुभव अगर करने हैं तो एक बात हमें अपनानी होगी, हम मधुबन में नहीं हैं, बाबा ने हमें सूक्ष्म वतन में फरिश्तों की दुनिया में विशेष निमंत्रण दिया है। तो हम सभी फरिश्तों की दुनिया में सारे दिन भर में स्वयं को विचरण करें। दूसरी बात, जो हमें निमंत्रण देता है वो हमें साथ भी देता है, कंपनी भी देता है। तो ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप में मेरे साथ साथ रहते हैं, मेरे साथ साथ चलते हैं और मुझे उनसे सकास मिलता है। उनकी मदद से मुझे फरिश्ता स्थिति की अनुभूति बहुत अच्छी होती जा रही है, ऐसा हमें अनुभव करना है। तो आत्मिक स्थिति को बहुत पक्का करना है। बाबा के पास आने के बाद अगर श्रेष्ठ स्थिति बनाना है तो उसका सीक्रेट एक ही है। ये पहला पाठ, अंतिम पाठ और सबसे महत्वपूर्ण पाठ जो ब्रह्मा बाबा ने पक्का किया था वो हमने करना है। दूसरी बात, ब्रह्मा बाबा ने आत्मिक स्थिति को पक्का करके आत्मिक दृष्टि को भी बहुत पक्का किया था। इतना पक्का किया था कि बाबा की दृष्टि को एक्सरे विजन कहते थे। जो अंदर छिपी हुई आत्मा है बाबा को स्पष्ट नजर आती थी। तो आत्मिक स्थिति और आत्मिक दृष्टि का पक्का अभ्यास करने के कारण बाबा ने पवित्रता की स्थिति बहुत ऊंची प्राप्त की थी। पवित्रता को दूसरे शब्द में ब्रह्मचर्य कहते हैं। ये ब्रह्मचर्य शब्द आया कहां से? ब्रह्मा बाबा के नाम से ये ब्रह्मचर्य शब्द निकला है। क्यों निकला है? क्योंकि सारे संसार में ब्रह्मा बाबा ने पवित्रता की स्थिति बहुत ऊंची बनाई थी। जहां तक कोई भी धर्मात्मा, पुण्यात्मा, महान आत्मा पहुंच नहीं सका, इतनी ऊंची स्थिति ब्रह्मा बाबा ने बनाई थी। इसलिए उनके स्थिति की यादगार में नाम ही ब्रह्मचर्य पड़ गया। तो हमें भी ब्रह्मा बाबा के जैसी ऊंची पवित्रता की स्थिति बनाना है। मैं आत्मा, ये आत्मा, हम दोनों आत्मा, आत्मा भाई भाई, एक पिता की संतान, बात खत्म। मैं पवित्र आत्मा हूं और जो मेरे सामने आती है आत्मा वो भी पवित्र आत्मा है। इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो बहुत ऊंची पवित्रता की स्थिति की अनुभूति हमें होती है। तो आत्मिक दृष्टि को हमें बहुत पक्का करना है। तीसरी बात, ब्रह्मा बाबा ने हर रोज 2 बजे उठकर बहुत कड़ी तप साधना की है। अमृत वेले 2 बजे परम धाम में मैं और बाबा केवल दो ही हैं। ऐसी कठोर साधना बाबा ने अमृत वेले उठकर की थी। ऐसे हमें भी अमृत वेले पावरफुल स्थिति को अनुभव करते जाना है। अमृत वेला माना ही अमृत प्राशन करने की वेला, शक्तियों का अमृत प्राप्त करने की वेला। तो अमृत वेले हमें शक्तिशाली योगाभ्यास करते जाना है। बहुत अच्छी स्थिति को अनुभव करना है। चौथी बात, ब्रह्मा बाबा हर रोज सवेरे मनन चिंतन करते थे और सोचते थे मैं अपने बच्चों को ताजा ज्ञान का भोजन बनाता हूं। तो अभी यहां समय आपके पास है, इसलिए हर रोज आधा घंटा एक घंटा एकांत में बैठकर मनन चिंतन जरूर करना है, क्योंकि मनन चिंतन के द्वारा हमें बाबा से नई नई युक्तियां, नई नई प्रेरणाएं, नए नए टचिंग्स मिलते हैं, नए नए ज्ञान रत्न मिलते हैं, जिससे हमारे प्रसाद में बहुत तेजी आती है। मनन करने वाले ही माया का पूर्णतया हनन करते हैं, अर्थात नामो निशान मिटाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं माया भी अलग अलग रूप में हमारे सामने आती है। हमें हार पहनाने के लिए आती है, तो माया किसी भी रूप में हमारे सामने आए उसके रॉयल रूप को भी हमने परखना है और उस माया का हनन अर्थात नामो निशान मिटाना है। तो मनन चिंतन के द्वारा हमें ज्ञान का बल भी स्वयं में अनुभव करते जाना है। मेरा बाप ज्ञान का सागर है, मैं भी आत्मा मास्टर ज्ञान सागर हूँ, ऐसी अनुभूति हमें होती रहे। और जितना ज्ञान का बल हमारे में बढ़ता है उतना निर्भयता हमारे में बढ़ती है, क्योंकि आत्मविश्वास और साहस जैसे शक्तिशाली दिव्य शस्त्र हमें मनन चिंतन के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। इसलिए एकांत में जरूर बैठना है और मनन चिंतन का अभ्यास ब्रह्मा बाप समान हमने करना है। उसके लिए चारों तरफ से हमारी मन और बुद्धि एकदम फ्री हो, एकदम डिटैच हो, और जो भी हम मुरली में सुनते हैं बाबा का ज्ञान, उसमें जो पॉइंट हमारे दिल को टच करते हैं उस पॉइंट को हमें एकांत में बैठकर उसकी गहराई में जाना है। जो भोजन हम मुरली में जमा करते हैं बुद्धि रूपी टिफिन बॉक्स में, उस भोजन को हमने हजम करना होता है, और हजम करने का तरीका एक ही है, मनन चिंतन करते रहना। इसलिए ब्रह्मा बाप समान हमें भी मनन चिंतन के अभ्यास को बढ़ाते जाना है। पांचवी बात, हमें कर्म योगी बनकर सारे दिन भर में रहना है। कई समझते हैं कर्म योगी अर्थात जो हम हाथों से कर्म करते हैं वही कर्म है, लेकिन कर्म अर्थात जो भी हमारी कर्मेंद्रियां हैं उनसे जो हम कर्म करते हैं उसको कर्म कहते हैं। आंखों से देखना ये भी कर्म है, कानों से सुनना ये भी कर्म है, मुख से बोलना इसको भी कर्म कहते हैं, मन से सोचना इसको भी कर्म कहते हैं। वैसे तो हम निरंतर कर्म करते रहते हैं, इसलिए कर्म करते समय मुझे बाबा को याद करना है। कर्म और योग अलग अलग न हो, लेकिन कर्म और योग साथ साथ हो। बाबा कहते हैं अमृत वेले और नमाज शाम के समय आप योग का अभ्यास बहुत अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन जब कर्म क्षेत्र पर जाते हैं कर्म को करते हैं उसमें बहुत बिजी होते हैं लेकिन योग को किनारे रखते हैं। तो कर्म योगी बनने की प्रैक्टिस हमें शांति वन में करना है। जब भी हम चलते फिरते उठते बैठते हैं मैं आत्मा हूँ और सर्वशक्तिवान निराकार शिव पिता की संतान हूँ, इसी मस्ती में सदा खोए रहें। तो जो भी कर्म हम करते रहते हैं उस कर्मों में दिव्यता आती रहती है, क्योंकि हम सभी महान आत्माएं हैं। जो महान आत्माएं होती हैं उनके कर्म भी साधारण नहीं होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। लेकिन श्रेष्ठ कर्म करने के लिए बाबा की याद सदा साथ होना जरूरी है। दूसरी बात, बाबा ने हर रोज मन बुद्धि संस्कार की दरबार लगाते थे। हमें यहां प्रैक्टिस करना है, रात को सोने के पहले एकांत में बैठना है और मन और बुद्धि संस्कार तीनों की दरबार लगानी है और चेक करना है मन ने बुद्धि को कितना सहयोग दिया, बुद्धि ने मन को कितना सहयोग दिया, संस्कारों का और मन बुद्धि का कितना मेल जोल रहा। इन तीनों ने एक दो को मदद करके मुझे अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने में या अविनाशी कमाई करने में कितनी मदद की, उसकी चेकिंग बाबा हर रोज रात्रि को करते थे और दूसरे दिन उसको चेंज भी करते थे, दृढ़ संकल्प करते थे कल मैंने इसमें प्रोग्रेस अनुभव करना है। तो इस युक्ति को भी हमें अपनाना है। और दूसरी बात, बाबा की हर एक आत्मा के प्रति बेहद की शुभ भावना शुभकामना रहती थी। हमें यहां अभ्यास करना है, हम सभी आत्माएं एक पिता की संतान हैं, सबका भला होता रहे, सब आगे बढ़ते रहे, सबकी उन्नति होती रहे और ये मेरा परिवार बहुत सुंदर गुलदस्ता बन जाए। ऐसी शुभ भावना मन में रखने का अंदर ही अंदर हमें प्रसाद करते रहना है, क्योंकि लंबे समय तक ये अभ्यास करते हैं तो कभी हमारे जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति आती है, ऐसी कोई व्यक्ति आती है, उसके बारे में अशुभ भावना आने की संभावना होती है, उस संभावना को भी हम खत्म कर सकते हैं। इसलिए मेरे मन में हमेशा सर्व के प्रति शुभ कामना शुभ भावना पनपती रहे। आप सभी यहाँ आए हैं अलौकिक अनुभव करने के लिए। बाबा का इशारा है, अभी समय के अनुसार अनुभव की अथॉरिटी बनते चलो। अलौकिक अनुभव स्वयं के पास बढ़ाते चलो, क्योंकि ऐसे भट्टी में हम ऐसे सुंदर गहन अलौकिक अनुभव अच्छी तरह से कर सकते हैं। और ऐसी अनुभवी आत्माओं को तीन मुख्य लाभ होते हैं। पहला लाभ, जिनके पास अलौकिक अनुभव के पंजे बहुत होती हैं, वो हलचल में भी अचल स्थिति बनाने में सफल होते हैं। दूसरा लाभ, आने वाले हलचल के समय भी अनेक आत्माओं को सहयोग देने की क्षमता उनके पास होती है। और तीसरा लाभ, ऐसे अलौकिक अनुभवी आत्माओं के द्वारा परमात्म प्रत्यक्षता इस संसार में होती है, क्योंकि परमात्मा गुप्त हैं, परमात्मा की शक्तियां भी गुप्त हैं, तो परमात्मा की इस संसार में प्रत्यक्षता कैसी होगी। ऐसे योगी अनुभवी जो बाबा के बच्चे हैं उनके द्वारा परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, ऐसा अनुभव दुनिया वाले करेंगे। तो परमात्म प्रत्यक्षता में उनकी अहम भूमिका होगी, उनको एक्स्ट्रा मार्स भी मिलेंगे। अभी हमें अनुभवी कौन सी बातों में बनना है? कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि तो यहां तक ही पहुंचता है, चंद्र सूर्य तारा तक, लेकिन जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। अनुभवी सातवें आसमान में पहुंचता है, सबसे ऊंचे स्थान में परम धाम में पहुंचता है और परमात्मा के संग का अनुभव बहुत अच्छी तरह से करता है। तो सबसे श्रेष्ठ है अनुभवी आत्माएं। अभी हमें अनुभवी कौन सी बातों में बनना है? मुख्य 10 बातों में, 10 एरियाज में हमें अनुभव करते जाना है, थकना नहीं है। जब तक संपूर्णता के मंजिल पर नहीं पहुंचते हैं तब तक हमने अलौकिक अनुभवी इन बातों में बनते जाना है, थकना नहीं है। आपको बहुत अच्छा गोल्डन चांस दिया है बाबा ने अनुभव करने का, तो योग की भट्टी में जो बाबा आपको अनुभव कराते हैं उन अनुभव को आप अपने कर्म क्षेत्र पर दोहरा सकते हैं और उसके आधार पर अपनी स्थिति को ऊंचा उठा सकते हैं। इसलिए बाबा ऐसी योग की भट्टी करने का गोल्डन चांस हमें देते हैं। तो 10 एरियाज है। पहला एरिया, हमें परम धाम निवासी बनने का अनुभव बार बार कराते रहना है। परम धाम हमारा असली घर है। परम धाम का ज्ञान होना एक बात है, लेकिन वहां जाके वहां के वातावरण को अनुभव करना और उस घर पर अपना अधिकार बढ़ाना, ये दूसरी बात है। तो हमें बार बार परम धाम रूपी घर जाना है और उसके वाइब्रेशन को बहुत अच्छी तरह से अनुभव करते जाना है। दूसरा एरिया, सूक्ष्म वतन वासी बनने का अनुभव हमें बढ़ाते जाना है। हम सभी का वर्तमान समय जो घर है वो सूक्ष्म वतन है। जहां मेरा बाप ब्रह्मा रहता है वो मेरा घर कहलाता है। तो सूक्ष्म वतन का ज्ञान तो है, लेकिन उस घर में हमें जाना है, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करना है और ब्रह्मा बाप की कंपनी को भी अच्छी तरह से एंजॉय करना है और उस घर पर अपना अधिकार बढ़ाना है। तीसरा एरिया, हमें वैकुंठवासी बनने का अनुभव बढ़ाते जाना है। बाबा ने 80 और 90 के दशक में सतयुग में हमारी दिनचर्या कैसी होती है ये सारी बातें स्पष्ट की है। किस लिए की है? वो बातें हमें यहाँ अनुभव करना है ताकि वो अनुभव लेकर हम अपने साथ परम धाम जाएंगे। उन अनुभव के आधार पर ऐसे रॉयल संस्कार, नोबल संस्कार, गोल्डन एजेड संस्कार आत्मा में भरेंगे और जैसे नई दुनिया में आएंगे उन संस्कारों के आधार पर हमें ऐसे रॉयल परिवार में स्वतः ही जन्म मिलेगा। इसलिए वैकुंठवासी बनने का अनुभव हमें बार बार बढ़ाते जाना है। कैसी प्रकृति हमारी दासी होगी, कैसे हम मौज में वहां का जीवन अनुभव करेंगे, उस सारा बेफिक्र बादशाह की तरह अनुभव करेंगे, उस सब बातें यहाँ अनुभव करना है। चौथा एरिया, आत्म अनुभूति करने का एरिया हमें बहुत पक्का करना है। आत्मा आत्मा घोटते रहना है, रटते रहना है। इसलिए कहते हैं जब समझते हैं आत्मा तो पापों का होता है खात्मा, क्योंकि आत्मा समझते ही बाबा की याद आती है, पापों का जो हिसाब है खाता है वो खत्म हो जाता है। जितना समझेंगे देह से न्यारा उतना चमकेगा भाग्य का सितारा, क्योंकि देह से न्यारा होते हैं, बाबा की याद आती है, भाग्य विधाता से खजाने हम लूटते हैं और भाग्य को चमकाते हैं। बाद में पांचवा एरिया, स्वमानधारी होकर रहने का अभ्यास हमको बहुत बढ़ाना है। ब्रह्मा बाबा ने शुरू दिन से यह अभ्यास किया है, मैं नारायण नंबर वन इस संसार में नारायण है, वो नारायण बनने में जा रहा हूं। शुरू दिन से बाबा ने यह स्वमान का अभ्यास किया। दूसरा स्वमान बाबा अनुभव करते थे, मैं अभी इस बूढ़े शरीर में हूं लेकिन कल मैं मिचनो बनने वाला हूं, सारा संसार जिसके पीछे दीवाना है वो मिचनो बनने जा रहा हूं, मैं सारे संसार की जो प्रजा है उस प्रजा का मैं पिता हूं। तो इससे स्वमान का अभ्यास बाबा ने बहुत किया। हमें भी कोई ना कोई स्वमान का टाइटल आत्मा के साथ जरूर जोड़ना है, क्योंकि हम केवल आत्मा नहीं है, हम महान आत्माएं हैं, भगवान की नजरों में आई हुई आत्माएं हैं। तो टाइटल स्वमान का जरूर जोड़ना है, फिर आप देखेंगे ये भट्टी के दौरान आप ईश्वरीय नशे में, ईश्वरीय खुशी में और एकदम रूहानी कुमारी में रहेंगे, उससे आपको बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव बाबा कराएंगे। छठवां एरिया, बाबा के पास परम धाम में जाकर बैठने का अनुभव हमें बढ़ाते जाना है। परम धाम में जाकर परमात्म अभिमानी बनने का अनुभव बढ़ाना है। जितनी बार हम बाबा के पास जाएंगे उतनी बार हमारा अलौकिक अनुभव गहराई से बढ़ते रहना जरूरी है। जिससे जाते हैं हमारी प्रोग्रेस उसमें होनी चाहिए। बाबा के पास अब 10% बांध से बैठते हैं, उसको बढ़ाना है, 20% बांध से बैठना है, 30% बांध से बढ़ना है। हमारा लक्ष्य है 100% बांध के साथ बाबा के पास बैठना। तो इस अनुभव को हमें बढ़ाते जाना है। सातवां एरिया, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति हमें बढ़ाते जाना है। हमारा लक्ष्य है संपूर्ण फरिश्ता स्थिति को अनुभव करना। केवल फरिश्ता स्थिति नहीं, संपूर्ण फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाना। फरिश्ता अर्थात मोज निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज का शरीर ड्रेस धारण की है, तो जो प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है उसका परसेंटेज दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। जितना वो बढ़ता जाता है तो आत्मा की जो ड्रेस है, ये स्थूल देह रूपी ड्रेस है, तो उसका भान घटता जाता है और फरिश्ता स्वरूप की जो ड्रेस है उसका भान बढ़ता जाता है। तो 0% देह का भान और 100% फरिश्ता स्वरूप का भान, दिव्य प्रकाश पुंज शरीर का भान रहना, इसको कहते हैं संपूर्ण फरिश्ता स्थिति अनुभव करना। आठवां एरिया, हमें सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है, सर्व शक्तियों का अनुभव करना है। कोई भी शक्ति को हमने छोड़ना नहीं है, अष्ट शक्तियों की अनुभूति सारे दिन भर के कारोबार में हमें करना है, क्योंकि जैसे जैसे ये प्रयोग हम करते रहेंगे अमृत वेले नुमा शाम के समय शक्तियां जमा करेंगे और सारे दिन भर में वो शक्तियों का प्रयोग करेंगे तो सर्व शक्तियों का अनुभव और सर्व गुणों का भी अनुभव करना है। कोई भी गुण हमें मिस नहीं करना है। जो भी 36 गुण बाबा ने बताए हैं वो सभी गुण रूपी फल मेरे जीवन रूपी पेड़ पर लगे हुए हो, लदे हुए हो, ऐसा भी हमें अनुभव करना है। और नौवा एरिया है मनसा सेवा के अनुभव का, अनुभव हमें और बढ़ाते जाना है, क्योंकि आगे चलकर केवल मनसा सेवा का ही बोलबाला बढ़ेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे परिस्थितियां बिगड़ती जाएगी और अनेक आत्माओं को हमें शांति शक्ति की अंजलि देनी होगी, उनको सहयोग देना होगा, उनकी पालना करनी होगी। उसके लिए मनसा सेवा करने का अभ्यास अभी से ही हमें बढ़ाना है। हमारी दादियां दादाएं जो मनसा सेवा करती हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से सफलता मिलती थी, मिलती है। लेकिन हम जब मनसा सेवा करते हैं हमारे मन में एक संशय आता है कि पता नहीं मैं मनसा सेवा कर तो रहा हूं लेकिन इसमें मुझे सफलता मिलेगी या नहीं। ये संशय क्यों आता है? क्योंकि मनसा सेवा में मेरे पास इतने अनुभव नहीं है। दूसरा कारण, मनसा सेवा करने का साधन इतना शक्तिशाली नहीं है, तो इसलिए उस क्षेत्र में भी हमें बहुत अच्छी तरह से अनुभवी बनते जाना है। और दसवां एरिया, हमें बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति को बढ़ाते जाना है। बाबा कहते हैं मैं 24 घंटे आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं, यूज मी और यू कैन लूज मी, दैट्स अप टू यू। अब भगवान हमें 24 घंटे कंपनी देने के लिए तैयार हैं, तो हमें भी बाबा को फ्री नहीं छोड़ना है। सारे दिन भर में विभिन्न संबंधों की अनुभूति हमें करते जाना है, क्योंकि बिंदी समझकर बिंदु बाप को जब हम याद करते हैं तो थोड़े समय के बाद, घंटा दो घंटे के बाद हमें बोर होने लगता है। ये मनुष्य की टेंडेंसी है, वो हमेशा निवने चाहता है, नवीनता जाता है, चाहता है। और नवीनता अनुभव करने के लिए अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हमें विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते रहना है। कितने संबंध अनुभव करेंगे भाई, बोलो। हाँ जी, सर्व संबंध अनुभव करना है, क्योंकि बाबा को ही पारसनाथ के नाम से पुकारते हैं। पारसनाथ वही एक ऐसे नाथ हैं जिससे सर्व संबंधों का रस प्राप्त हो सकता है। इसलिए अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हमें बाबा के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति को बढ़ाते जाना है। हाँ जी, कितने संबंध अनुभव करेंगे, बोलो। हाँ जी, बाबा को फ्री छोड़ना ही नहीं है। अमृत वेले जैसी आंख खुलती है बाबा को गुड मॉर्निंग करके बाबा के साथ पिता का संबंध अनुभव करना है। ये मेरा पिता मुझे निस्वार्थ प्यार करता है और अविनाशी वर्षा देता है। लौकिक पिता तो स्वार्थ से प्यार करता है और थोड़ा सा हद का वर्षा देता है। जैसे हम सेवा केंद्र पर जाते हैं या यहाँ क्लासरूम में आते हैं, टीचर के रूप में हमें अनुभव करना है। भगवान मेरे टीचर है, दूर देश से आकर मुझे पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, मधुर शिक्षाओं से सजा रहे हैं। और क्लास पूरा होने के बाद बाबा के रूम में जाकर सदगुरु के रूप में हमें अनुभव करना है, बाबा का हाथ हमारे सिर पर हमें अनुभव करना है, बाबा की वरदानी दृष्टि से अनेक वरदान प्राप्त करते जाना है। और सारे दिन भर में उनकी ही छत्र छाया में चलते रहना है, पलते रहना है। सतयुग में आपके सिंहासन पर छतरी छोटी चाहिए या बड़ी चाहिए, बोलिए। हैं जी, छोटी चाहिए बड़ी चाहिए? बड़ी चाहिए, छोटी नहीं चलेगी। बताओ भाई, अपने सतयुग में जो सिंहासन मिलेगा उसके ऊपर बड़ी छतरी तब मिलेगी। जो आत्माएं संगम युग में लंबे समय तक भगवान की छत्र छाया में अनुभव करते हैं, उनको बड़ी छतरी सतयुग में स्वतः ही मिलती है। ये उसके पीछे राज है। ठीक है भाई, चौथा संबंध, बाबा का मैं खास बच्चा हूं, मैं आम बच्चा नहीं हूं, मैं विशेष बच्चा हूं। तो खास बच्चा किसको कहते हैं? खास, उल्टा क्या है? सखा। तो भगवान को सखा के रूप में अनुभव करना है, खुदा मेरा दोस्त है ऐसा अनुभव करना है, और उनके साथ सारे दिन भर में खाना है, पीना है, उठना है, बैठना है, रास करना है, मस्ती करना है, बाबा को सखा अनुभव करना है। क्योंकि मैंने उसके साथ जो पवित्रता का प्रॉमिस के आधार पर दोस्ती की है, उस दोस्ती को मैंने और पक्का करना है। क्योंकि अंतिम समय यही मेरा दोस्त खुदा मुझे दौड़कर आकर मदद करेगा, बाकी कोई भी मुझे मदद नहीं कर सकता है। इसलिए वो दोस्ती मुझे गहरी अनुभव करना है। ठीक है, छठवां अनुभव, बाबा मेरा बच्चा है, बच्चा बनाना माना बाबा को वर्षा देना। लौकिक में अगर वर्षा बच्चे को नहीं देते हैं तो बच्चे कहते हैं आपको तो बाप को कहते हैं, आपको तो बाप कहने में भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आपसे मुझे क्या मिला, केवल आपने जन्म दिया, वर्षा तो कुछ दिया ही नहीं। तो बाबा को बच्चा बनाना अर्थात वर्षा देना, क्योंकि यही बच्चा हमें अंत तक साथ देगा, परमधाम रूपी घर ले जाएगा और राजधानी में भी भेजेगा। इसलिए जैसी अनुसया ब्रह्मा विष्णु शंकर को बच्चिया बनाकर उनको नहलाती थी, सुलाती थी, खिलाती थी, पिलाती थी, ऐसा हमें भी बाबा को बच्चे के रूप में अनुभव करना है। बाद में सातवां अनुभव संबंध, बाबा मेरा साजन है, मैं आत्मा उसकी सजनी हूं। इस संबंध के द्वारा 100% प्यार आप बाबा के तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना? तो बस मैं आत्मा उसकी सजनी हूं और मेरा वो साजन है। परम धाम रूपी पीस पैलेस में उनके साथ बैठकर उस संबंध की अनुभूति आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। बाद में नेक्स्ट कौन सा? हाँ, सातवां संबंध, बाबा मेरी माँ है। दुनिया में लोग कहते हैं मैं सब कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन जिसने मुझे जन्म दिया है, जिसके कोख में मेरी शरीर की रचना हुई है, जिसने मेरे लिए कई रातें नींद नहीं की हैं, क्या उसने मेरे लिए नहीं किया है? मैं सब कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन माँ की ममता नहीं मैं बोल सकता हूँ। देखो भाई, 83 जन्मों की माँ को तो छोड़ दिया, अभी 84 जन्म के माँ में फंस गए। इसलिए शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा के द्वारा अलौकिक माँ अनुभव करना है। जैसे वो अनुभव करेंगे तो लौकिक माँ से हमारा जो थोड़ा सा लगाव है वो खत्म होता जाएगा। भाई कितनी माँ है आपको, हैं जी? कितनी माँ है बोलो ना, हैं जी? चार है, हाँ जी छह माह छह, इतना प्यार हमें जो मिलता है दुनिया में किसी को भी नहीं मिलता। पहली माँ जिसने मुझे लौकिक जन्म दिया है, दूसरी माँ जिसने, ब्रह्मा माँ जिसने मुझे अलौकिक जन्म दिया है, तीसरी माँ मम्मा जो मुझे अभी भी इनडायरेक्टली गुप्त रीति से पालना दे रही हैं, चौथी माँ ड्रामा रूपी माँ, जब कोई तूफान आता है, व्यर्थ संकल्पों का तूफान आता है, तो ड्रामा रूपी माँ मुझे अपने आंचल में छिपा लेती है, ठीक है ना भाई। और पांचवी माँ धरती माँ भारत माँ, जिसके मिट्टी में ये शरीर की रचना हुई है। और छठवी माँ परमात्मा, सबसे बड़ी माँ है परमात्मा। इतना प्यार हमें मिल रहा है, इतना प्यार दुनिया में किसी को नहीं मिलता है। मिलता है भाई? नहीं मिलता है। तो कहने का भाव है, हमें बाबा को सारे दिन भर में विभिन्न संबंधों की अनुभूति को बढ़ाते जाना है। तो ऐसे ये जो भट्टी के दौरान आपको अलौकिक अनुभव करते जाना है, अनुभव की पूंजी को बढ़ाते जाना है। लौकिक दुनिया में जिनके पास धन बहुत होते हैं उनको धनवान कहते हैं। ब्राह्मण संसार में धनी आत्माएं कौन सी कहलाती है? जिनके पास अलौकिक अनुभव का धन बहुत है वो धनी आत्माएं कहलाती हैं। तो हमें ये अलौकिक अनुभव की पूंजी को बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते जाना है, ठीक है भाई। तो अभी हम बहुत सुंदर योग की अनुभूति करने जा रहे हैं। बाबा इतना उच्च कोटि का ज्ञान देते हैं, सत्य ज्ञान के सागर हमें उच्च कोटि का ज्ञान देते हैं। उसकी ब्यूटी क्या है? ऐसे अलौकिक अनुभव योग में करना। तो एक बार अच्छी तरह से सभी तालियां बजाएंगे, अच्छी तरह से बजाएंगे। सभी चुस्त और मस्त होके बैठेंगे, सीधा पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी हो, बूढ़े की तरह न बैठना है, सीधी हो, एकदम चुस्त और मस्त होके बैठना है। ओम शांति। इस शरीर रूपी चैतन्य दीपक में मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जग मग रही हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश दिव्यता की रोशनी चारों ओर फैल रही है। मौज आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति के चहुओ सुंदर आभा मंडल दिव्य प्रकाश का औरा अनुभव हो रहे। सचमुच मैं कितनी नसीबवान आत्मा हूं जो अपने सत्य स्वरूप को दिव्य स्वरूप को दिव्य चक्षु से स्पष्ट देख रही हूं। और अनुभव भी कर रही हूं। यह शरीर तो मेरा केवल ड्रेस है, कपड़ा है। यह शरीर तो मेरा वाहन है। यह शरीर तो मेरा मकान है। मेरा असली स्वरूप निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। भाग्य विधाता भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्म ज्योति हूं। स्वयं भगवान मेरे भाग्य के गीत हर रोज मुरली में गाते थकते ही नहीं है। मुझे अपने भाग्य पर नाज है। मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति इस शरीर रूपी चैतन्य दीपक से न्यारी होकर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही इस विश्व के गोले से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ती हुई जा रही जा रही। ओहो फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं। जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मोज आत्म ज्योति ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी सुंदर हल्की फुल्की ड्रेस यह। फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा, अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे, अति मीठे शिव पिता भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। स्नेह सागर की लहरें ब्रह्मा बाबा के नेत्र मार्ग से मौज फरिश्ते की ओर प्रवाहित हो रही है। मैं फरिश्ता स्नेह सागर की लहरों में लहरा रहा हूं। बाबा की बाहों के झूले में झूल रहा हूं। झूलते झूलते बाबा की बाहों में समा गया हूं। परम सुख की अनुभूति हो रही है। बाबा के नैनों में स्नेह के मोती चमक रहे हैं। शिकिल दे बच्चे, मैं बेहद खुश हूं। मैंने अपना खोया हुआ लाल 5000 वर्षों बाद पाया है। मैं बेहद खुश हूं। मेरे लाडले बच्चे, इस फरिश्तों की दुनिया में आपका सदा स्वागत है। जब भी चाहो जिस भी संबंध की अनुभूति मुझसे करना चाहो। करते रहो। मेरे दिल तक नसीन बच्चे, कभी मुझे परम पिता के रूप में अनुभव करो। छोटा बच्चा या बच्ची बनकर मेरी गोदी में खेलो। मेरा आज्ञाकारी वफादार फरमानदार बच्चा या बच्ची बनकर पिता का निस्वार्थ प्यार मुझसे अनुभव करो। मेरे लाडले बच्चे, कभी मुझे परम शिक्षक के रूप में अनुभव करो। सचमुच मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि स्वयं निराकार सर्वशक्तिवान भगवान साकार रूप में मुझे पढ़ाएंगे, कभी नहीं सोचा था। वो हर रोज दूर देश से आकर मुरली के माध्यम से मुझे मधुर शिक्षाओं से सजाते हैं। अमूल्य ज्ञान रत्नों से मेरी बुद्धि रूपी झोली भरपूर करते हैं। सचमुच मुझे अपने टीचर पर नाज है। मेरे नूरे रतन बच्चे, कभी मुझे परम सद्गुरु के रूप में अनुभव करो। मेरी वरदानी दृष्टि से अनेक वरदान प्राप्त करो। मेरा वरदानी हाथ सदा अपने सिर पर अनुभव करो। मैंने दिए हुए मन मना भव के महामंत्र का अज्ञापा जाप करते रहो। सचमुच मैं कितनी न खुश नसीब आत्मा हूं जो डायरेक्ट भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते हुए स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर कर रही हूं, क्या कहने मेरे भाग्य का। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति बुद्धि रूपी विमान में बैठकर दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। ओहो, दिव्य ज्योति धाम में पहुंच चुके हूं, जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति का सन्नाटा छाया हुआ है। कितना प्यारा घर है यह मेरा परम धाम, मेरा स्वीट साइलेंस हो, मेरे प्राणों से भी प्यारे मेरे प्राण आधार, मेरे प्राण पिता, सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबुल, मेरे समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति बाबा की सुंदर छवि को दिव्य चक्षु से देख रही हूं। बाबा की सुंदरता का आनंद ले रही हूं। बाबा मैं आत्मा दुख के सागर में गोते खा रही थी, चिल्ला रही थी, और ये रहम के सागर बाबा आपने मुझे दुख के सागर से निकाल कर अपने दिल तख्त पर अपनी शीतल गोद में बिठा दिया बाबा। मेरी जन्म जन्मांतर की थकान मेट गई बाबा। जो एहसान आपने मुझ पर किया बाबा, कोई और नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की बरसात मुज आत्म ज्योति पर हो रही है। बस होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य शिव पिता से अनंत शक्तियां प्रचंड शक्तियां असीम शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो रहे हैं। इस गहन योग की भट्टी में मुझ आत्मा में जो अपवित्रता की खाद है, मिट्टी है, वो मेल्ट होती जा रही है। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। ज्ञान सूर्य शिव पिता से शक्तियों के किरणों की सकाश मुझ आत्म ज्योति पर पड़ रही है और मेरे माध्यम से शक्तियों की किरणें विश्व के ग्लोब पर अनगिनत आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर पड़ रही है। अनेक आत्माएं सुकून अनुभव कर रही है। कितना सुंदर अनुभव है यह नमा श्याम के समय विश्व कल्याणकारी स्थिति का अनुभव। इतने विशाल परम धाम में मैं आत्म ज्योति महाज्योति परम ज्योति शिव पिता से महामिलन का आनंद ले रही हूँ। वहां रे मैं, वहां मेरे बाबा, वहां मेरा भाग्य। शक्तियों से भरपूर आत्मा,
यहाँ